प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम मध्य प्रदेश के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का संदर्भ दिया था। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कटनी में आयोजित हुआ था, जहां पर रानी दुर्गावती पर आधारित दास्तान सुनाई गई थी। इस आयोजन की प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी प्रशंसा की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना आभार जताया था। रानी दुर्गावती के बारे में दास्तान सुनकर लोगों को उनकी वीरता और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के बारे में जैसे सब कुछ आंख के सामने घटित होता हुआ महसूस होने लगा था। रानी दुर्गावती की वीरता के कई सच्चे किस्से हैं। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर को एक सोने का करेला भिजवाया था। सोने का करेला मतलब गोंडवाना सोने की तरह समृद्ध है, करेले की ऊपरी सतह की तरह दुर्गम है और अगर उसको खाने की कोशिश की गई तो वो कसैला है। रानी दुर्गावती ने यह संदेश अकबर को अच्छी तरह समझा दिया था। इस दास्तान को सुनाया था लखनऊ के हिमांशु वाजपेयी ने, जो 2013 से विभिन्न विषयों पर 200 से ज़्यादा दास्तान गोई के अपने शोज कर चुके हैं। जैसे हम लोग बचपन में कोई कहानी सुनते हुए उसमें डूब जाते थे, उसी प्रकार ये दास्तान गोई की विधा है। इसमें स्टेज से दास्तान सुनाई जाती है और ऐसा माहौल होता है कि लोग आत्ममुग्ध हो जाते हैं। हिमांशु ने अपनी इस यात्रा के बारे में SBS को बताया।
दास्तान गोई की शुरुआत हमने अंकित के कहने पर, अंकित के मोटिवेट करने पर की। अंकित चड्डा हमारी पीढ़ी के, हमारे वक्त के सबसे उम्दा दास्तान गो, वो अपनी तरह के अकेले कलाकार जिनके जादू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे बयान नहीं किया जा सकता, वो दास्तान करते थे। और चूंकि हमारे करीबी दोस्त थे तो बहुत हम लोग डिस्कस करते थे आपस में दास्तान जो अंकित करते थे वो। तो उसके बाद अंकित से चूंकि एक शायराना रिश्ता भी था, शेर शायरी सुनाने का तमाम चीजें, तो अंकित कहते थे कि भाई आप क्यों नहीं करते दास्तान गोई। तो पहले तो ये बात मजाक ही में कही गई लगती थी, हम भी उसको ऐसे ही उसका रिएक्शन देते थे कि हम क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, हम तो पत्रकार थे तब। लेकिन फिर जब बार बार अंकित ने कहा और जब बहुत संजीदगी से कहा तो फिर हमें भी लगा कि यार एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो अंकित ही ने कहा कि भाई आप करिए, और जो हमने अब अंकित से कहा कि भाई हमें तो आती ही नहीं है, हमने तो कभी थिएटर वेटर किया नहीं है स्टेज पर परफॉर्मेंस, तो अंकित ने कहा हम सिखाएंगे, उसमें क्या है, तो कुछ चीजें हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर अंकित ने ही फिर सिखाया भी, और अंकित ही फिर ले गए महमूद फारूकी साहब के पास, जो जिनका बड़ा नाम है दास्तान गोई के हवाले से और रिवाइवल के लिए। तो इस तरह से वो सफर की शुरुआत हुई 2013 से, और अब 2021 है तो 200 से ज्यादा शो हो चुके हैं और दुनिया भर में दास्तानें सुनाई हैं और अलग अलग लेवल पर लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो एक सफर है जो चल रहा है जी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में रानी दुर्गावती के दास्तान का जिक्र किया, इस पर मुझे इसलिए संतोष हुआ कि अब कम से कम ये आर्ट फॉर्म जिसको हम लोग बड़ी मेहनत से, हम और हमारे साथ प्रज्ञा जो हमारे साथी हैं जो दुर्गावती की दास्तान हमारे साथ करती हैं, बड़ी मेहनत से इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाने की, पॉपुलराइज करने की और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें उस काम में एक मदद मिलेगी। अब दुर्गावती की दास्तान को सुनाना कुल मिलाकर एक चीज है, जब रानी दुर्गावती के पास अकबर फरमान भेजता है कि भाई तुम हमें सरेंडर कर दो और अपना हाथी हमारे पास भिजवा दो और अपने दीवान आधार सिंह को भेज दो, तो रानी उसे जवाब में एक करेला भिजवाती है। तो वो जो हिस्सा है उसमें यह है कि भाई करेला भिजवाने का अर्थ ये था कि गोंडवाना करेले की तरह सोने का करेला भिजवाती है दुर्गावती उसको। तो कहती है कि वो मतलब उसका अर्थ ये था कि गोंडवाना सोने की तरह समृद्ध है, करेले की ऊपरी सतह की तरह दुर्गम है, मुश्किल है, और करेले ही की तरह कड़वा कसैला है, जिसे हड़पना, जिसे निगल जाना इतना आसान नहीं होगा, और एक मामूली से मामूली गोंड भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस तरह से एक अकबर से जो उनका एक टकराव हुआ अपने स्वाभिमान की रक्षा को लेकर, उसका एक बयान है। और बाकी तो दास्तान का लुत्फ जो है वो पूरे उसके बयान के साथ सुना जाए तब है। जी,
हिमांशु अपनी दास्तान में भारत के उन वीर सपूतों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य वीर सेनानियों की कहानियां शामिल रहती है। हिमांशु का अंदाज़े बयान कुछ ऐसा रहता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग इन महान सेनानियों के किस्से सुनकर गर्व महसूस करते हैं।
शहीदों के ऊपर सबसे पहले तो हमने काम किया था, वो था काकोरी एक्शन 1925 के ऊपर, जिसमें अशफाक बिस्मिल और उनके साथ तमाम क्रांतिकारियों की भूमिका थी, जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक सरकारी खजाना जो एक पैसेंजर ट्रेन में रखा हुआ था उसको लूट लिया था। उसी के बाद मुकदमा चला था जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी और बाकी लोगों को लंबी लंबी कैद हुई थी। तो पहले तो वो हमने किस्सा सुनाया, उसके बाद फिर हमने तमाम जैसे लक्ष्मीबाई की हमारी दास्तान बड़ी मशहूर हुई, गंगा का जिक्र आपने किया, गंगा की दास्तान बिल्कुल ही ताज़ा दास्तान है जिसमें हम गंगा का जो पौराणिक महत्व है और उसके साथ साथ जो गंगा की वर्तमान जो दारुण दशा है उन दोनों को एक साथ बयान करते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ताकि एक जो सुनने वाला है वो उसके पौराणिक महत्व से भी अवगत हो सके, साथ ही साथ उसके मन में एक भाव, एक संवेदना, एक करुणा जग सके कि भाई एक चेतना भी आ सके कि हमने गंगा को जो इतनी महत्वपूर्ण नदी है उसको कैसे खड़ा डाला।
अगर आप हिमांशु की दास्तान लाइव सुनेंगे या फिर रिकॉर्डिंग तो अलग ही समा होगा। पेश है हिमांशु की ही आवाज में कुछ रिकॉर्डिंग उनकी दास्तानों की, जिसमें वो रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से बयान कर रहे हैं।
हुई तो रानी की ये धूम दुश्मनों तक भी पहुंची। सबसे पहले मालवा के सूबेदार बाज बहादुर को ये ख्वाब आया कि गोंडवाना को जीता जाए। उसने सोचा कि औरत राज कर रही है, कितना मुकाबला करेगी। बाज बहादुर गोंडवाना पर चढ़ाई करने आ गया। खबर मिलते ही रानी ने युद्ध की सब तैयारी की, और जब बाज बहादुर सेना लेके आया तो सेना उसने ऐसी सजाई थी कि आगे आगे हाथी और घोड़े थे और उनके पीछे सवार थे। जैसे ही घाटी में उसकी सेना आई, रानी ने दोनों तरफ से आगे और पीछे से तीरों की बरसात करवा दी। हाथी बहक कर इधर उधर भागने लगे और हाथियों के भागते ही फौज में भगदड़ मच गई। अब रानी दुर्गावती के जियाले तलवार लेकर टूट पड़े, भयंकर युद्ध हुआ। बाज बहादुर का चचा आसफ खान, जो अपने आप को बड़ा काबिल समझता था, बीच में था, उसने पलट कर रानी पर वार करना चाहा। रानी ने बिजली की गति से वो वार बचाया और ऐसा जोरदार हाथ फतेह खां के मारा कि फतेह खां घोड़े समेत बीच से आधा आधा कट गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने देखा वो थम कर रह गया, जम कर रह गया। इसके बाद तो रानी की फौज ने बाज बहादुर की फौज के छक्के छुड़ा दिए। जंग में रानी दुर्गावती की विजय हुई और उसके बाद एक बार फिर दुर्गावती की कीर्ति पताका चारों लोकों में फहराई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हाजरीन, पेश है ये अमर गाथा रानी झांसी की, जिसे बुंदेलखंड के हरबोलों ने जी जान से गाया और नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचाया। तुम्हारात में दूल्हा, चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म में रूह, आंख में नूर, दिल में सुरूर, चराग में लो, सीपी में मोती और नाव में लंगर की जो शान होती है, वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। रानी के शौर्य का किस्सा जब भी छिड़ता है तो मन में तारीख का एक दौर जिंदा हो जाता है। सुनाने वाले इस तरह सुनाते हैं कि 1842 का साल था, बिठूर का पावन धाम था और गंगा का निर्मल किनारा था कि तभी देखा दूर से दो लोग घोड़े पर सवार चले आते हैं। दोनों बच्चे ही नजर आ रहे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के की उम्र 16 साल, लड़की की तकरीबन 13 साल। लड़का कुछ आगे निकला तो लड़की ने अपने घोड़े को एड़ दी और कहा,
देखती हूँ कैसे आगे निकलता है।
लड़की आगे निकल गई, लड़के ने पीछा जो करना चाहा तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया। लड़का धड़ाम से जमीन पे आ गया, सर उसका लकड़ी के टुकड़े से टकराया, खून निकलने लगा। लड़का चिल्लाया कि मनु मैं मरा।
लड़की ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, मोड़ा और उतर कर ढांढस बताते हुए लड़के से कहा, घबराओ मत नाना, चोट गहरी नहीं है, खून बहने से मत डरो, अभी लिए चलती हूँ कोठी पे, मरम पट्टी हो जाएगी और बस तुम चंगे हो जाओगे। मनु ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थामी, दूसरे से खून में तर नाना को बिठाया और फिर खुद उसके पीछे जा बैठा।
नाना के खून में तर मनु जब कोठी पर पहुंची तो उसके पिता मोरोपंत दोनों की हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने मनु से पूछा, अरे मनु ये चोट कैसे लगी?
अरे मुझे बिल्कुल नहीं लगी काका, ये आपके लाडले नाना है ना, इन्हें आई है चोट।
अरे मगर लगी कैसे?
जरा सी बात थी, घोड़े ने ठोकर खाई, ये संभल नहीं सके, पिथर गए, घोड़ा निकल लिया और ऐसा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा।
मोरोपंत ने मनु के इस मस्ती पे ध्यान नहीं दिया, मगर वो इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बिटिया मनु नाना साहब को अपने घोड़े पर बिठाकर अकेले कोठी तक ले आई थी। गुरुपंत ने नाना साहब को मुलायम बिछौने पर लिटा दिया, उसके घाव को अच्छी तरह से धोया, उस पर मरहम पट्टी की, मगर नाना दर्द से बिलख रहा था और उसकी ये हालत मोरोपंत से देखी नहीं जा रही थी।
मनु इठलाई और बोली, नाना अब इतनी भी नहीं लग गई है, 56 बाल्टी आंसू बहा दिए, और काका आप भी ऐसे कर रहे हैं, इसे पता नहीं क्या हो गया।
चोट जरा सी नहीं है मनु, देखो खून कितना बह गया।
अरे तो खून तो बह ही गया है, अब आंसू तो ना बहाएं। और काका आप जो वीर शिवाजी महाराज की गाथाएं सुनाते थे उनमें क्या लड़ाइयां रेशम की डोर और कपास की पोनियों से हुआ करती थी।
मनु ये बच्चा है।
बच्चे मुझसे बड़ा है, कुश्ती और मलखम करता है, अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था?
तब की बात और थी मनु।
क्यों अब क्या बदल गया? सब तो वही है, वही धरती, वही आकाश, वही चंदा, वही सूरज, वही सितारे, अब क्या बदल गया?
अब इस देश का भाग्य बदल गया है, अंग्रेजों के भाग्य का उदय हुआ है।
ये सब मनगढ़ंत है, डरपोकों का ढकोसला, और मैं डरपोक नहीं हो सकता।
किसी भी विषय पर दास्तान सुनाना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, इतिहास के पन्ने पलटने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको इस प्रकार ढालना पड़ता है कि आसान भाषा में वो हो, रोचकता बनी रहे, लोगों तक अपनी बात कह सकें, दर्शकों को पसंद आए और सत्यता बनी रहे। इस क्षेत्र में आने वाले नए कलाकारों के लिए हिमांशु बताते हैं।
नए लोग आना चाहें तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सबका स्वागत है, ये मैदान बिल्कुल आपको बुला रहा है, और बस इस मैदान के, जैसे कि हर मैदान के कुछ उसूल और कवायद, कुछ कायदे होते हैं, तो इसके भी हैं, आप उनको समझिए, उनको निभाइए और इस मैदान में आइए, ये बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा।
सदियों पुरानी दास्तान गोई की कला को हिमांशु जैसे कलाकार जीवंत ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसको परियों की कहानी से आगे ले जाकर देशभक्ति और गौरवशाली इतिहास, उस सबको भी सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ से फैसल फरीद।